نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين الأخلاء خليل یہ خلیل کی جمع اخلاء یہ اس شخص کے لیے آتا ہے جس کے ساتھ بے انتہا محبت ہو بہت گہری دوستی بیسٹ فرینڈ جس کو کہتے ہیں تو جو یہاں پہ بیسٹ فرینڈ ہیں بہت گہرے دوست ہیں بہت محبت ہیں یوم اذن بعدہم لبعد عدو اس دن جو قیامت کا ہوگا بعض بعض کے دشمن ہوں گے الا المتقین سوائے تقوی والوں کے سوائے جو خدا خوفی کے بیس کے اوپر ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں اب یہاں پہ دوستی کی بات کیوں آئی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ قیامت کے دن جو رشتے ہوں گے وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے آپس کے رشتے داریاں ماں بچے بہن بھائی آپس میں وہ تو ویسے ہی محبتیں ختم ہو جانی ہیں اس کے بعد رہ جاتی ہے دوستی دوستی کے اندر جو قریبی دوست ہے دلی دوست ہے وہ کیسے دوست ہوتے ہیں یعنی جو انسان کے دلی دوست ہوتے ہیں ان سے تو انسان بہت زیادہ یعنی ایسا کلوز ہوتا ہے کہ ان کی مرضی پہ چلتا ہے ان کے ساتھ اس کی سوچ ملتی ہے ان کے ساتھ ملنا جلنا ہر چیز ان کے ساتھ مل کے کرنی ہوتی ہے نا گہری دوستیں آپ نے دیکھی ہیں نا یہ کیسا ان کا آپس کا تعلق ہوتا ہے تو یہاں فرینڈس کی بات ہو رہی ہے ایسے فرینڈس جو گہرے ہیں اس دن وہ فرینڈس بھی دلی دشمن بن جائیں گے کیوں دلی دشمن بنیں گے اس لیے کہ ان کی جو دوستیاں تھیں وہ تو اللہ کی خاطر تھوڑا ہی تھی وہ تو آپس کے کسی مفاد کے لیے تھیں یا کسی اس چیز کے لیے تھیں وہ تو اللہ کی خاطر تھی ہی نہیں تو جو اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوستی ہوگی محبت ہوگی وہ سب ختم ہو جائیں گی اور دوستوں کا ذکر خاص طور پہ کیوں آ رہا ہے اس لیے کہ دوست ہی ایسے ہوتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے پیرنٹس کی بھی اتنی نہیں سنتا بہن بھائیوں کا بھی اتنا نہیں قریب ان سے ہوتا جتنا دوستوں سے قریب ہوتا ہے اسی لیے پیئر پریشر کا اتنا بتایا جاتا ہے نا دوست جو ہے نا اپنے دوست کو بہت انفلوئنس کرتے ہیں آپ دیکھ لیں جن کے بہت گہری دوستیاں ہوتی ہیں تو آپ ویکینڈز دیکھیں ان کے گھر میں ہوتے ہیں یا وہ ان کے گھر میں ہوتے ہیں ایوننگز دیکھیں شامیں دیکھیں وہ ان کے ساتھ گھوم پھر رہتے ہیں کہیں سیر و تفریح ہوتی تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں کوئی خوشی غمی کا موقع ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں گہری سہیلیاں آپ دیکھیں شاپنگ پہ جا رہی ہیں تو اکٹھے کپڑے بنا رہی ہیں تو اکٹھے کسی کلاس کو لے رہی ہیں تو اکٹھے ایک دوسرے کے گھر ان کا ایسے آنا جانا ہوتا ہے جیسے اپنا ہی گھر ہے دکھ سکھ میں ایک ساتھ ہیں گھنٹوں باتیں کرتی ہیں فونوں پہ دوسرے کی سمجھنے جان ہوتی ہے تو جہاں پہ اتنی گہری دوستی ہو وہاں پہ ظاہر ہے دوست دوست کی مرضی پہ چلتا ہے نا کہ بھائی دوست کا اپروول ہو تو پھر کیونکہ دوستی تو ورنہ تو باقی رہ ہی نہیں سکتی نا تو یہ دوستیاں جب اللہ کی خاطر نہیں ہوں گی تو یہی حق کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان حق پہ نہیں آتا پھر کہ حق بات اس کے سامنے آ بھی جائے تو اب کیا ہے پہلے دوست کا تو اپروول ہو اگر دوست اس بات کو اچھا نہیں سمجھتی تو اب اگر میں نے یہ بات کر لی یہ بات مان لی تو میری تو دوستی ختم ہو جائے گی پھر میری تو دوست میرے سے چھوٹ جائے گی اور وہ جو فن میں اس کے ساتھ کرتی ہوں وہ تو رہے گا ہی نہیں تو انسان پھر دوست کو نہیں چھوڑتا ہے دیکھیں جب دوستی اور حق کے درمیان ٹائی پڑ جاتی ہے نا ایک کو لوں کس کو لوں ان میں سے چوز کروں تو وہ دوستی کو چوز کر لیتا ہے اور حق کو چھوڑ دیتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یہ جن دوستیوں کے لیے تم اتنی حق کو بھی پیچھے کر رہے ہو یہ تو دوستیاں اس دن دشمنی میں بدل جائیں گی یہ تعلقات اس دن ختم ہو جائیں گے بلکہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دیں گے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اتنے گہرے دوست جو آج ایک دوسرے کی جان ہے वो कैसे हो जाएंगे कि दोस्ती तो गई सो गई, अब ये हाल है कि वहां पे दुश्मनी है। सिर्फ जो तकवा के बुनियाद पे दोस्ती है, सिर्फ वो कायम रह सकती है। आज अगर हम भी चेक करें, और ये आपका होमवर्क है कि अपनी दोस्तों की लिस्ट बनाएं और ये देखें कि कौन सी मेरी दोस्तें हैं जिनके साथ तकवा की बुनियाद पे दोस्ती है। कुछ लोगों से तो आपने इसलिए ताल्लुक रखा होता है ना कि उनको दावा उनके अंदर करने के लिए, वो फिर वो दोस्ती दिली दोस्ती तो ना हुई उसको, आप उसको इस लिस्ट में ना रखिएगा। क्योंकि आप उनसे जब मिलते हैं तो जाहिर है इसी सोच से के साथ मिलते हैं कि मैंने इनको दावत देनी है अल्लाह की और अल्लाह की बात बतानी है, यानी कोई कुरान के कुछ जिक्र करना है या कुछ है, तो वो दोस्ती तो ना ही, क्योंकि आप उनके फिर मशगलों में तो उनके साथ शामिल नहीं होते ना, या आपका दिल तो उनकी मजलिस में नहीं लगता, आप तो जाते हैं और दावा करके बस आ जाते हैं। दोस्त की कैटेगरी तो डिफरेंट होती है। तो इसमें जहन में रखिएगा जब आप ये लिस्ट बनाने लगे कि ऐसा ना हो कि आप दावा तो ये कर रहे हैं कि मैं दीन फैलाने के लिए और दीन की बात बताने के लिए इसके साथ इसके घर जाती हूँ, हालांकि मामला उलट हो, उसमें भी खुद को धोखा दे रहे हो। ये दोस्ती ये हो है अपने मजे लेने के लिए और कह दिया कि मैं दावा के लिए कर रही हूँ, तो वो तो गलत बात हो गई ना। तो खैर, बात हो रही है फ्रेंड्स की, सबके कोई ना कोई फ्रेंड्स होते हैं, तो वो लिस्ट आप इंशाल्लाह जब बनाएंगी ना तो उसमें जरा चेक करती जाइएगा। अपने आपसे अपने क्वेश्चन पूछना यही है, डिफाइन करना है मेरी फलां से दोस्ती क्यों है, क्या मकसद है मेरा, क्या मफाद है मेरा उससे। अगर कोई भी मफाद नहीं है, आप कहती हैं कि नहीं बस वैसे ही मैंने दोस्ती की हुई है, तो उसका मतलब यह है कि कोई ना कोई तो सोच आपकी उसके साथ मिलती होगी तभी आपने दोस्ती, कुछ कॉमन इंटरेस्ट तो होगा ना, कुछ कॉमन ग्राउंड तो होंगे, वो कॉमन ग्राउंड क्या है फिर उसको डिफाइन करें। यानी मिसाल के तौर पे आप किसी के साथ दोस्ती करती हैं, तो कोई दोस्ती ऐसी होती है कि अच्छा बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो मेरी इसके साथ दोस्ती है, कोई दोस्ती ऐसी हो सकती है जॉब पे साथ है, कोई ऐसी हो सकती है कि एक साथ ट्रेवल करते हैं कहीं, या कोई दोस्ती ऐसी हो सकती है कि खाना वो अच्छा पकाती है इसलिए मेरी दोस्त है, बड़ी हुनरमंद औरत है इसलिए दोस्ती है, बहुत फैशनेबल है इसलिए दोस्ती है। और बाज़ दोस्तियाँ इतनी यानी अजीब बात है, बाज़ लोग दोस्ती इसलिए करते हैं कि वो अमीर बहुत है, भाई उसने अमीर हो गई तो उसने आपको क्या दे देना, तो इसलिए अमीर है तो इसलिए दोस्ती है, या वो तोहफे बड़े अच्छे देती है तो इसलिए दोस्ती है, या वो दोस्तों पे बहुत खर्च करती है इसलिए वो मेरी दोस्त है, या दावतों पे बहुत बुलाती है अपने घर बहुत बुलाती है तो इसलिए मेरी दोस्त है, या कोई और दुनियावी शौक है जो आपके उससे मिलते हैं तो इसलिए दोस्ती है, या वो मेरी गीबतों को सुनती है और सुन के मेरी साइड लेती है तो इसलिए वो मेरी दोस्त है। कुछ ना कुछ तो डिफाइन करें ना कि क्या वजह है, क्यों आपने दोस्ती रखी हुई है, तभी पता चलेगा ना कि कौन सी दोस्ती अल्लाह की खातिर है। ओके, मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह ताला कि इसका अजर कितना है। तो जो तकवा की बुनियाद पे दोस्ती है ना, वो सिर्फ वहां पे रहेगी। और तकवा कहाँ है, तकवा कोई ऊपर ऊपर की चीज का नाम नहीं है कि ऊपर से किसी ने स्कार्फ ले लिया तो जो आपने कहा ये बड़ी मुत्तकी है इसलिए जो है ना, बेशक जाहिरी जाहिरी उसमें हुलिये में भी फिर वो चीज झलकने लगती है जब अंदर तकवा होता है, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे नहीं हम किसी को कह सकते। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा का कैसे बताया, 3 दफा अपने दिल की तरफ इशारा किया और फरमाया अत्तकवा हा हुना अत्तकवा हा हुना अत्तकवा हा हुना, तकवा यहां होता है, तकवा यहां होता है, तकवा यहां होता है, यानी तकवा दिल में है। अगर दिल में खुदा खौफी है तो मजलिस में भी होगी, तो जाहिर में भी होगी, तो बातिन में भी होगी, तो हर चीज में ही होगी, तन्हाई में भी होगी, घर वालों में भी होगी, बाहर वालों में भी होगी, और अगर दिल में नहीं है तो बाहर वालों के सामने होगी, घर में आके सारा वो जैसे कपड़े चेंज किए तो तकवा भी उतार के रख दिया, फिर बाहर जाने लगे तो जब नए कपड़े पहने तो तब तकवा भी पहन लिया, लोगों के सामने बहुत सेंसिटिव हो गए, बहुत पर्टिकुलर हो गए, बिस्मिल्लाह कहने में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहने में भी, और घर में हुए तो कोई परवाह ही नहीं, तो ये थोड़ी तकवा होता है। तो तकवा जो है ना, ये दिल की चीज का नाम है, दिल में खुदा खौफी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदान हशर में अल्लाह ताला निदा देंगे या अल्लाह की तरफ से कोई पुकारने वाला पुकारेगा कि कहाँ है वो लोग जो मेरे जलाल के लिए, मेरी अजमत के लिए, मेरी किबरियाई के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, आज मैं अपने अर्श के साए में उनको जगा दूंगा जब किसी के लिए कोई साया नहीं है। अब कोई साया नहीं ना होगा उस वक़्त अल्लाह ताला के अर्श का साया इन लोगों को मिलेगा। कितनी बड़ी बात है जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करें, और ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं होती, क्योंकि जब अल्लाह की खातिर इंसान मोहब्बत करता है बहुत सारी कुछ चीज़ों को इंसान को यानी छोड़ना भी पड़ता है और बहुत कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। क्योंकि ये दोस्ती कैसी होती है, देखिए दोस्ती हमेशा लाइक माइंडेड लोगों में होती है ना, लाइक माइंडेड। जब मुत्तकी तकवा की बुनियाद पे दोस्ती करेंगे तो जाहिर है आपका भी माइंड अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह से खौफ रखने वाला होगा, तो तब भी आपको ऐसे लोगों के साथ भी मोहब्बत होगी और दोस्ती करने का शौक होगा। आपने देखा होगा एक मजलिस में बैठे हुए लोग हैं ना, जो कुफर और फिस्क पे चलने वाले लोग होते ना, फौरन उनकी तरफ लपकते हैं जो वैसे ही होते हैं, ठीक है। मुजरिम मुजरिम के साथ दोस्ती करता है, क्यों? इसलिए कि वो जो जैसा वो खुद है वैसा ही उसका दोस्त होगा, तो तभी उसको मना नहीं करेगा ना, वरना तो अगले दिन कहेगा कि तुम ये क्या गलत काम कर रहे हो। दोस्तियां तो लाइक माइंडेड लोगों में ही हो सकती हैं, इसलिए अगर आप में तकवा होगा तभी आप मुत्तकी लोगों को ही ढूंढेंगे, और जिनमें खुद तकवा नहीं है वो उनसे भागेंगे, वो कहेंगे यहाँ पे नहीं हमारा, तो ये तो कुछ ना कुछ चीज़ को मुझे रोकती रहेगी। तो इसकी निशानी क्या है कि इंसान के जो दोस्ती है वो तकवा की बुनियाद पर है। इसकी निशानी देखें, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो तकवा की बुनियाद पे दोस्ती होगी अजर उसी के ऊपर होगा, और वो ही दोस्ती वहाँ तक रहेगी। तो एक तो बात यह है कि उनकी बातों में लघवियात नहीं होती, बेकार बातें जिनका कोई हासिल नहीं है। उनकी दोस्ती का मकसद अल्लाह की रजा होता है, अल्लाह का कुर्ब होता है, वो इसी रास्ते में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की खामियां एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके के साथ बताते हैं। वो दूसरे की खामियों पे या वो गलत रास्ते पर अगर जा रहा है, ना हक बात कर रहा है, तो उनको ऐसे ही परेशानी होती है जैसे दूसरे की किसी दुनिया के नुकसान के ऊपर दुख होता है। इन्नी उहिब्बु का फिल्ला कहने से सिर्फ अल्लाह की खातिर नहीं दोस्ती हो जाती, ये भी ना कहीं हम धोखे में रहें कि बस मैंने ये कह दिया तो बस मेरी दोस्ती इसीलिए नहीं। चेक करें कि जिस दोस्त के साथ मैं बैठती हूँ उसके बाद मेरे ईमान में कितना इजाफा होता है, कमी आ जाती है या इजाफा होता है, नेकी करने का शौक बढ़ता है या कहती हूँ कि अब आइंदा से ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, फिर बाज़ जगहों पे देखें, बाज़ दोस्तें ऐसी होती हैं, आप उनके घर गए ना उसके बाद आके आपको अपना घर इतना बुरा लगने लगता है, शौहर भी बहुत बुरा लगने लगता है, इसमें तो 10 खामियां, और घर उसका घर कितना अच्छा था, और उसने ये भी चीज़ खरीदी है वो भी चीज़ खरीदी, उसने तो इतने जोड़े बना लिए और उसने तो इतना ये चीज़ और जेवर खरीद लिया, और मेरे पास क्या है? समझ लें ये दुनिया की खातिर मिलना जुलना, ये दुनिया की खातिर की दोस्तियाँ। क्योंकि अगर आपकी दोस्ती अल्लाह की खातिर होती ना, तो आपके लिए नेकी का शौक बढ़ता, ना कि शॉपिंग का शौक बढ़ता। अगर शॉपिंग का शौक बढ़ रहा है तो समझ लें ये दुनियावी दोस्ती है। तो आपकी नमाजों में मसलन कोई बेहतरी आई है या पहले से भी गई गुजरी हो गई है? आप कोई बुराई की तरफ आपको का रुझान कम हुआ है या ज्यादा हो गया? कोई बुराई है उसकी तरफ आप अब ज्यादा लपक रहे हैं या अब आपको उससे दूरी हो रही है? ये आपको चीजें मतलब आसानी करेंगी आपको ये बताने में कि ये दोस्ती किस कैटेगरी में आती है। फिर ये कि अगर आप कहीं भटकने लगे तो क्या दोस्त आपको थामती है या कहती है हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हो? देखिए याद रखें, ये जो अल्लाह की खातिर दोस्ती होती है ना, उसमें वतवासव बिल हक की वतवासव बिल सब्र होता है। एक दूसरे को हक बात की, जो हक है वही कहती है दूसरे को, सबर की तलकीन करती। ये नहीं कि अल्लाह के रास्ते से रोकने लगे, तुमने क्या ये शुरू किया हुआ पढ़ना पढ़ाना, बस छोड़ो इसको, तो समझ लें कि बस ये फिर अल्लाह की खातिर तो नहीं है दोस्ती। फिर तोहफे देने के लेने के मयार भी बदल जाते हैं, ये नहीं कि बस अदले का बदला, उसने इतना दे दिया तो मैं इतना नहीं दूंगी तो वो नाराज और वो नाराज गया, उसने इतने की चीज दी तो मैं इतने की दूं, क्योंकि ये दुनिया की खातिर तो है ही नहीं। फिर आपकी जो बातें एक दूसरे से करते ना, उसके टॉपिक्स भी चेंज होते हैं, जो अल्लाह की खातिर दोस्ती है उसमें बिल्कुल चेंज होते हैं, ना किसी की गीबत, ना इधर उधर की बातें, बस उनका फोकस पॉजिटिव चीजों पे रहता है। अल्लाह की खातिर अल्लाह की बात की या कोई कुरान की बात की या कोई हक की बात की, तो ये सारी चीजें इसमें। फिर एक और बात है, जो दोस्ती अल्लाह की खातिर होगी ना, उसमें कभी भी छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, छोटी छोटी बातों पे माइंड कर लेना, तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया, तुमने मुझे पूछा क्यों नहीं, तुमने मेरी मुझे फोन क्यों नहीं किया, तुमने मुझे विजिट क्यों नहीं किया, तुमने मुझे टाइम क्यों नहीं दिया, ये वाली चीजें नहीं होती। बहुत कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती दुनिया दुनिया के मामलात में, कि जो है ना दुनियावी मामलात में आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन हो, ना ही ये माइंड करना और ये होता है, ना ही हसद होता है। हाँ, नेक कामों में एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, गुनाहों से दूर रखना होता है, अल्लाह की तरफ बढ़ने में मदद देना होता है। क्योंकि ये दोस्ती सिर्फ जाती ख्वाहिशात पे थोड़ी मबनी होती है, इसलिए इसमें गिले शिकवे भी नहीं होते, शिकायतें भी नहीं होती। और जो दुनियावी दोस्तियां होती हैं उसमें तो शिकायतें ही शिकायतें, आए तुमने ऐसे वक्त में नहीं पूछा, उस वक्त नहीं, तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं है। तो जाहिर है वो तो फिर अपनी जात के लिए हुई ना दोस्ती, अल्लाह की खातिर तो ना हुई। फिर एक और जो मयार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वो ये है कि ये वो दोस्त होता है कि जिसे देख के खुदा याद आ जाए, अल्लाह याद आ जाए जिसको देखकर, ईमान बढ़े उसके साथ रह के, जो टाइम आप उसके साथ गुजारे ईमान आपका बढ़ता जाए, और फिर वो आपकी इज्जत की हिफाजत करने वाला भी हो। ये ना हो कि आपकी बातें बाहर जाके करे, बाहर की बातें आपको आके करे, ये भी अल्लाह की खातिर दोस्ती नहीं होती। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अब हम अपने ऑनेस्टली अपने आप से देखें कि हमारे दोस्त क्या, जब मैं इस दोस्त से मिलती हूँ तो उसके बाद उससे मिलने के बाद या उसके मिलने के दौरान, ये तो नहीं है कि उधर नमाज का टाइम हुआ हुआ है, उधर दोस्त ने ऐसी एक्टिविटीज रख ली कि नमाज ही जाती रही, उधर मेरी क्लास का टाइम हुआ या कुरान पढ़ने का टाइम हुआ है और उधर वो कह रही है चलो छोड़ो ना रहने दो, आज छोड़ दो क्लास, तो क्या ऐसा हो गया, कुरान ही है ना, कौन सी है, बाद में कर लेना, तुम बस मेरे साथ वक्त गुजारो। तो ये कौन सी अल्लाह की खातिर दोस्ती है? अल्लाह की खातिर तो दोस्ती हो तो वो कहेंगे मिल के अल्लाह के रास्ते पर भागते चले जाएं, मिल के अल्लाह के रास्ते पर चलें। तो ये दोस्त आपको अल्लाह के रास्ते से कभी रोकने वाला नहीं होगा, साथ चलने वाला होगा, कभी आपको अल्लाह का रास्ता मुश्किल नहीं करके दिखाएगा, अरे ये तो बहुत मुश्किल है कैसे करोगी, ये नहीं कहेगा, वो कहेगा नहीं अल्लाह अल्लाह की खातिर जो चीज है तो हम उसमें क्यों ना पहल करें, उसमें क्यों ना साबिकून अव्वलून हो जाए, क्या अल्लाह की खातिर तुम इतना भी नहीं कर सकती? वो आपको जोश दिलाएगा, सपोर्ट करेगा, आगे बढ़ाएगा, हौसला देगा, ना कि रोकेगा। तो ये मतलब हाँ, मेरे ख्याल में आप खुद इस चीज को अब देख सकते हैं अच्छे तरीके से। थोड़ी सी मैंने आपको अलामत बता दी किस तरह से आप फैसला करेंगे कि ये दोस्ती किसकी खातिर है। थोड़ी सी आपको ये अहदीस भी सुना दूं कि जिनसे पता चलता है कि अल्लाह की खातिर जो दोस्ती है ना, सुबहान अल्लाह, उसका अजर अल्लाह ताला ने कितना देना है। उसके बाद दिल चाहता है कि वाकई इंसान के दोस्त ऐसे ही हों कि जो सिर्फ दुनिया के ही दोस्त ना हो थोड़ी देर के लिए, और ऐसी दोस्तियां यकीन करें दुनिया में भी पायदार नहीं होती। आज आप कहीं मूव हो जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, उसके बाद कोई अता पता ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो जो दोस्ती थी वो सिर्फ टाइम पास दोस्ती थी, चलो इसके साथ तो अच्छा टाइम गुजर जाता है इसलिए आप लोग एक दूसरे के दोस्त थे, वो दोस्ती वो नहीं थी जो अल्लाह की खातिर। क्योंकि अल्लाह की खातिर वाली दोस्ती तो चाहे इंसान कितनी भी दूर चला जाए तो कयामत तक कायम रहेगी। तो हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में याकूत के सतून हैं, ठीक है, पिलर्स हैं याकूत के, इन पर जबरज के बालाखाने होंगे जिनके दरवाजे खुले हुए हैं। दरवाजे उनके कैसे हैं? खुले हुए। वो ऐसे जगमगाते हैं, ऐसे यानी समझ लें ट्विंकल करते हैं, जैसे सितारा जगमगाता है, यानी ऊंची जगहों पे, और ऐसे जैसे सितारे टिमटिम करते हैं ना, इस तरह वो चमकते हुए दूर से नजर आते हैं। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह वो किसको मिलेंगे? फरमाया जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए आपस में मिल के बैठते हैं, अल्लाह के लिए एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। सुभान अल्लाह, मिले तो अल्लाह के लिए, बैठे एक साथ तो अल्लाह के लिए, उनकी मजलिस भी अल्लाह के लिए, उनकी बाहम मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, उनको मिलेंगे ये। अच्छा फिर ये ऐसे जो दोस्त होते हैं वो ये नहीं होता कि दोस्त के ऊपर कोई मुश्किल आई तो खुद दौड़ गए दुम दबा के, क्योंकि ऐसी दोस्ती तो हमेशा फिर दुनियादारी वाली दोस्ती रही ना। वो दुनिया दूसरे की अच्छी थी तो बहुत अच्छे थे, अब उसको कोई नुकसान हुआ या उसको कोई कोई मुश्किल आ गई, कोई मुसीबत में वो पड़ गया, कोई कुर्बानी का वक्त आया तो छोड़ छाड़ के भाग गए। अल्लाह की खातिर वाली दोस्ती ऐसी नहीं होती, वो तो हर मौके पे फिर दोस्त के साथ होता है ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दोस्ती देख लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी थी, फिर सोचें। ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर खा रहे हैं और वो पीछे आराम से बैठ जाएंगे, आप भाई हमने तो खैर बात कहते हैं ऐसी दोस्ती को, हमें क्या ज़रूरत है हम क्यों मुसीबत में पड़े। ये नहीं कि दोस्त को कोई ज़रूरत हो और वो उस वक़्त गायब ही हो जाए, ठीक है। और एक और हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। क्या है? मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई यानी लाजिम हो गई उन लोगों के लिए जो मेरे लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे के साथ मिल के बैठते हैं, मेरे लिए एक दूसरे की मुलाकात करने के लिए जाते हैं और मेरे लिए एक दूसरे पर खर्च करते हैं। खर्च भी करें अगर अल्लाह की खातिर दूसरे पर खर्च कर रहे हैं ना, उसके लिए भी आपको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। और अगर ये इसलिए खर्च किया कि ये भी मुझे तोहफा वापस दे, और मैं इसलिए इसको खाना खिलाऊं क्योंकि ये भी मेरा खाना कर दे, आपने दुनिया का छोटा सा तो फायदा ले लिया। अल्लाह की मोहब्बत मिल सकती थी उससे, इतनी बड़ी चीज, हम क्या ठीकरियों के पर ही राजी हो जाते। और हजरत अली फरमाते हैं, ये इब्ने कसीर में है ये हदीस, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, अभी आप सिर्फ सुन लें, लिखने की नहीं जरूरत, क्योंकि इब्ने कसीर में इंशाल्लाह ये पूरी आपको मिल जाएगी, कि दो ईमानदार जो आपस में दोस्त होते हैं, जब उनमें से एक का इंतकाल हो जाता है और अल्लाह ताला की तरफ से उसे जन्नत की खुशखबरी मिलती है, तो अपने दोस्त को याद करता है और कहता है, ऐ अल्लाह फलां शख्स मेरा दिली दोस्त था जो मुझे तेरी और तेरे रसूल की इताअत का हुक्म देता था, भलाई की हिदायत करता था, बुराई से रोकता था। होते हैं ना ऐसे दोस्त कि भाई अल्लाह की इताअत का ही हुक्म देते हैं इंसान को, बुराइयों से रोकने वाले होते हैं, भलाइयों की तरफ बढ़ाने वाले होते हैं, इनकरेज करते हैं। तो कहता है कि मेरा एक दिली दोस्त था जो अल्लाह मुझे मेरे साथ ऐसे था, और मुझे यकीन दिलाया करता था कि एक रोज अल्लाह से मिलना है। देखिए कितना अच्छा दोस्त था ना, वो यकीन दिलाता था कि एक दो रोज अल्लाह से मिलना है। बस ए बारी ताला तू उसे राह हक पर साबित कदम रख। सुभान अल्लाह, ये वहां पहुंच के अल्लाह से दुआ कर रहा है कि अल्लाह तू उसको हक पे रखना, यहां तक कि उसे भी तू वो दिखाए जो तूने मुझे दिखाया। यानी ये जो जन्नत है, जन्नत की जब उसको खुशखबरी मिलती है ना, तो वो आगे से कहता है कि अल्लाह उसको भी वही मिले। देखिए कितनी खैर ख्वाही है। और जो दुनियावी दोस्त होते हैं वो कहते हैं अगर मुझे सेल पे कोई चीज मिल गई ना, इसको ना मिले, कहीं इसको ना पता चल जाए। इतनी छोटी छोटी चीजों पे कभी भी हंसी भी आती है, इतनी छोटी फायदों के ऊपर भी इतने दिल छोटे हैं कि दूसरे को वो फायदा ना मिल जाए। मेरा बच्चा जहां से फायदा उठा रहा है, कहीं ये ना हो कि दूसरे को भी वो पता चल जाए और उसके बच्चा भी वही फायदा उठा ले। अल्लाहु अकबर, यानी अगर हमारे दिल इस तरह के हैं तो खुद ही अंदाजा लगाए ना कि फिर वहां पर पहुंच के क्या मांगेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ऐसे दिल भी तो दे ना। तो वो कहता है वहां पे पहुंच के भी ये कहता है। अच्छा अब देखें, सुभान अल्लाह, मैं ये सोच रही थी ये देखो ये बंदा वहां जाके अल्लाह ताला को ये कहता है ना, और उसका दोस्त जो दुनिया में होता है, ये हदीस में नहीं है, अभी मैं आपसे वैसे बात कर रही हूँ, कि ये जो दोस्त उसका, अगर मुत्तकी दोस्त आपने बनाया होगा ना, दुनिया से आप चले भी जाएंगे तो मुत्तकी दोस्त क्या करेगा, क्या करेगा, उसके लिए दुआएं करेगा, अल्लाहुम्मग़फिर लहू वरहमहू। ये दुआएं तो मुत्तकी दोस्त ही कर सकता है ना। अगर फासिक फाजिर दोस्त बनाए हुए तो आप दुनिया में चले जाएंगे, उनको तो यह भी नहीं पता कि पढ़ना क्या है इसके पीछे, इसको दुआ कैसे देनी है, इसके लिए दुआ भी करनी चाहिए या नहीं। दो दिन बाद उनकी महफिलों में कोई और दोस्त होगा, उसके साथ बैठे होंगे। अल्लाह की खातिर वाला दोस्त ही ये कर सकता कि दुआओं में फिर हमेशा याद करता रहे। तो वो कहता है कि या अल्लाह उसको भी वही मिले जो तूने मुझे दिया है। और इससे भी इसी तरह राजी हो जा जिस तरह तू मुझसे राजी हुआ। अल्लाह की तरफ से जवाब मिलता है, तू ठंडे कलेजों चला जा, इसके लिए जो कुछ मैंने तैयार किया है अगर तू उसे देख लेता तो बहुत हंसता, यानी तू बहुत खुश होता अगर उसे देख लेता और बिल्कुल आजुर्दा ना होता। फिर जब दूसरा दोस्त मरता है और उनकी रूहें मिलती हैं तो कहा जाता है तुम आपस में एक दूसरे का ताल्लुक बयान करो। बस हर एक दूसरे से कहता है ये मेरा बड़ा अच्छा भाई था, बड़ा नेक दोस्त था मेरा, बड़ा बेहतरीन साथी था। और दो काफिर जो आपस में एक दूसरे के दोस्त थे, या तू काफिर कह ले या जिन्होंने दुनिया की खातिर सिर्फ दोस्तियां की होती हैं और एक दूसरे को बुराई पे ही उकसाते हैं, बुरी जगहों पे लेकर जाते हैं, मुजरिम मजलिसों में एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, तो जब उनमें से एक मरता है और जहन्नुम की खबर दिया जाता है तो उसे भी अपना दोस्त याद आता है। यहाँ पे दोस्तियां वहां पे भी जाके याद आएंगी, इसका मतलब कितना सीरियस अफेयर है ये। कहता है बारी ताला फलां शख्स मेरा दोस्त था, तेरी और तेरे नबी की नाफरमानी की मुझे तालीम देता था। सुन लें आप, यानी तेरी और तेरे नबी की नाफरमानी की मुझे तालीम देता था। जाहिर है वो खुद उसी रास्ते पे था तो उसने यही कहना है ना कि उस इस रास्ते पे चलने की जरूरत नहीं, और क्या वो उसको नमाज और रोजे की तो नहीं तलकीन करेगा। बुराइयों की रगबत दिलाता था, भलाइयों से रोकता था। अब आप खुद यहां पर टेस्ट करते जाएं कि कौन से दोस्त हैं जो बुराइयों की तरफ आपको मोटिवेट करते हैं और भलाइयों से रोकते हैं। और तेरी मुलाकात ना होने का मुझे यकीन दिलाता था, बस तू इसे मेरे बात हिदायत ना करना ताकि वो भी वही देखे जो मैंने देखा, उसको भी ना अल्लाह हिदायत मिले और इस पर तू उसी तरह नाराज हो जिस तरह मुझ पर गजब नाक हुआ। देख लिया आपने ये दोस्तियां कैसी होती हैं, कितनी मतलब परस्त। फिर जब दूसरा दोस्त मरता है और उनकी रूहें जमा होती हैं तो कहा जाता है तुम दोनों एक दूसरे के औसाफ बयान करो। तो हर एक कहता है तू बड़ा बुरा भाई था, बड़ा बुरा साथी था, बदतरीन दोस्त था। देख लें इब्ने असाकर में है कि जिन दो शख्सों ने अल्लाह के लिए आपस में दोस्ताना रखा तो चाहे कोई एक मशरिक में और दूसरा मगरिब में हो, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह इन्हें जमा फरमाएगा कि ये है जिसे तू मेरी वजह से चाहता था। इतनी दूर बैठे हैं, कोई एक इंडिया में बैठा है, एक सऊदी अरब में बैठा है, एक अमेरिका में बैठा है, अगर दोस्तियां हैं सिर्फ अल्लाह की खातिर है, तो चाहे कोई एक मशरिक में एक मगरिब में, कयामत के दिन अल्लाह ताला जमा कर देगा। ये है जिसके तू मेरी खातिर मोहब्बत करता था। अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला उसको बहुत वैल्यू करते हैं। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी अबू जर से फरमाया ईमान की कौन सी कड़ी ज्यादा मजबूत है, ईमान की कौन सी कड़ी ज्यादा मजबूत है? फरमाया अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के लिए बाहम एक दूसरे की मदद करना। ये जो अब आप माशाल्लाह मिलके एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, अल्लाह की खातिर ही करते हैं। जो कुरान के लिए खिदमत कर रहे हैं, जो अल्लाह के दीन को फैलाने में एक दूसरे के साथ ही बने हुए, एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है फिर भी एक दूसरे की बेलौस मदद करते हैं। फरमाया ये ईमान की मजबूत कड़ी है, अल्लाह ही की खातिर दोस्ती करना और अल्लाह ही की खातिर दुश्मनी करना। यानी अल्लाह की खातिर दुश्मनी करना भी, ये किसी को छोड़ दें वो भी अल्लाह ही की खातिर, तो इसकी भी अल्लाह के नजदीक इतनी वैल्यू है कि ईमान मुकम्मल होता है इससे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कुछ जानते हो अल्लाह ताला को कौन सा काम ज्यादा पसंद है? किसी ने कहा नमाज, किसी ने कहा ज़कात, किसी ने कहा जिहाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सबसे ज्यादा उसे पसंद करता है कि मोहब्बत हो तो उसी के लिए हो, सुभान अल्लाह, और दुश्मनी हो तो उसी के लिए हो। यकीनन अल्लाह के बंदों में ऐसे लोग भी हैं जो ना नबी हैं ना शहीद हैं, मगर कयामत के दिन उनका मर्तबा देख के अंबिया और शुहदा भी रश करेंगे। लोगों ने पूछा वो कौन है? फरमाया ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशी पाने के लिए आपस में मोहब्बत की, हालांकि इनके दरमियान कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई माली लेन देन नहीं था। सुभान अल्लाह, कसम अल्लाह की इनके चेहरे सरापा नूर होंगे। जब सारे लोग डर रहे होंगे तो उनको कोई डर नहीं होगा, जब लोग गमगीन होंगे तो उनको कोई गम नहीं होगा। ये है अल्लाह की खातिर दोस्तियां करने का इनाम, ये है अल्लाह की खातिर दोस्ती करना। तो इन्हीं दोस्ती तो इंसान ने किसी ना किसी करनी होती, जाहिर है इंसान की एक जरूरत है दोस्ती, दोस्त बनाना इंसान की जरूरत है। लेकिन अगर ये दोस्ती तकवा की बुनियाद पे हो तो फिर तकवा की बुनियाद पे वही दोस्ती होगी ना जो अल्लाह की खातिर होगी। तो अल्लाह की खातिर दोस्ती होगी तो उसका अजर दुनिया में भी पाते हैं और आखिरत में भी पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों के घर जन्नत में तुम्हें इस तरह नजर आएंगे जैसे मशरक या मगरिब से तुलू होने वाला सितारा। लोग पूछेंगे ये कौन है, उनको कहा जाएगा ये अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, बाज़ दफ़ा बाज़ लोग सिर्फ इसलिए किसी को प्रेफर करते हैं कि ये मुसलमान है ना, यानी वो ना उनका रिश्तेदार होता है ना दोस्त होता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, ये अल्लाह की खातिर ही हुई ना मोहब्बत। वो काम करवाते हैं तो मुसलमान से, वो जॉब देते हैं तो मुसलमान को, वो ग्रोसरी खरीदते हैं तो मुसलमान की दुकान से, वो कहते हैं कि ये बस मुसलमान है। ये नहीं कि उनको कुछ उससे फायदा हो रहा है, कई दफा बड़े नुकसान भी हो जाता है कि मुसलमान ने फिर लोग ताने भी देते हैं, अच्छा और मुसलमानों की दुकान से लो ना, और मुसलमानों का तो यही हाल है, तुम भी उन्हीं के पास जा जाके उनसे ही उनको ही बिजनेस देती हो। तो बात ये होती है कि मेरा तो ये ईमान है कि अगर कोई ऐसा करता है सिर्फ इसलिए, मैं इससे डीलिंग इसलिए कर रहा हूं कि ये मुसलमान है, ये अल्लाह को मानने वाला है, तो अल्लाह ताला इसके ऊपर जरूर अजर देंगे। कोई कोई रिश्तेदार नहीं, किसी और के पास भी जा सकते हैं, किसी यहूदी के पास, यहाँ पे तो बहुत सारी ऑप्शंस है ना, बिजनेस किसी और को दे सकती हैं, आपने गैस डलवानी मुसलमान के स्टेशन पे चले गए, आपने डॉक्टर चूज किया मुसलमान को चूज किया, आपने ग्रोसरी की सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमान है, सिर्फ इसलिए, और कोई भी वजह नहीं है, तो क्या इसका अजर नहीं मिलेगा? क्या ये इसमें नहीं आता कि वो जो सिर्फ अल्लाह की खातिर ये नहीं सोच के कि हाँ मुसलमान है तो ये मेरे मुझे पैसे थोड़े कम कर देगा, नहीं, अल्लाह की खातिर वो मुसलमान के पास जाते हैं, तो जॉब देने लगते हैं तो मुसलमानों प्रेफर कर रहे हैं, क्यों? उनको क्या मुसलमान से मिलना, को मुसलमान ने एक्स्ट्रा उनको कुछ देना लेकिन सिर्फ इसलिए कि इनको अल्लाह का नाम प्यारा है ना, तो जब अल्लाह का नाम दोनों के बीच में आ जाता है तो उनको वो बंदा भी प्यारा लगने लगता है जो अल्लाह का नाम ले पाए, उनको उससे ताल्लुक महसूस होता है जो अल्लाह का नाम लेने वाला है, तो उसके ऊपर भी अजर मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला अजर देगा ना इस पे कि मेरे नाम की वजह से इसने इसके साथ ताल्लुक रखा। तो ऐसे लोग हैं या इबादी, उनसे उस दिन ऐलान होगा, ये जो ऐसी दोस्तियां करते हैं, ऐसे ताल्लुक रखते हैं, ऐसे मोहब्बतें करते हैं, या इबादी है मेरे बंदो, ला खौफुन अलैकुम, नहीं कोई खौफ तुम पर, अल यौमा आज के दिन, वला अंतुम तहजनून, और ना ही तुम गमगीन होगे। ये अल्लाह की खातिर जो दोस्त बनते हैं ना, जाहिर है वो अल्लाह के लिए मिल के जो बढ़ते हैं आगे तो अल्लाह की तरफ ही बढ़ते हैं, तो उनको ये खुशखबरी मिलेगी। इसी वजह से एक हदीस में भी आता है कि कयामत के दिन जब लोग अपनी कब्रों से खड़े होंगे ना, तो सब के सब बहुत बेचैन होंगे, बहुत घबरा रहे होंगे, उस वक़्त एक मुनादी निदा करेगा, ए मेरे बंदो, आज के दिन ना तुम पर कोई गम होगा ना कोई खौफ होगा। तो तमाम के तमाम लोग इसको समझेंगे कि सारों के लिए, शायद हम सारों के लिए ये खुशखबरी है। एकदम वो मुनादी निदा करेगा दोबारा, वो लोग जो ईमान लाए और जिस्म से नेक काम किए वही इनमें शामिल हैं, उस वक्त सिवाय सच्चे पक्के मुसलमानों के लिए बाकी सारे मायूस हो जाएंगे। तो ये उन लोगों को खुशखबरी मिल रही है, देखिए इसका फायदा कहाँ तक जाता है।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।